والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. اور وہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر. اللہ اکبر, بڑی خوبصورت بات ہے. لم یخر روح کا لفظ ہے, خرہ یخر روح کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے گرنا, خرہ کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, لیکن یہاں اعراض اور بے روحی کا معنی ہے. اہل عرب کہا کرتے تھے قاد فلان وقام فلان یبقی, فلاں آدمی مجھے گالی دیتا رہا اور فلاں آدمی روتا رہا. تو یہاں قعدہ بیٹھا ہونا, قامہ کھڑا ہونا کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ وہ ایسی محفلوں سے روگردانی کرتے ہیں. کن سے؟ جہاں نصیحت ہوتی ہے. بڑا بوجھا لگتا ہے وہاں بیٹھنا, کبھی ایک پاؤں پہ اٹھیں گے, کبھی بیٹھیں گے, کبھی گھڑی دیکھیں گے, کبھی پردوں کو گنیں گے, کب جان چھوٹے اس نصیحت کی محفل سے تو بھاگے. ایسی محفلیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی جس میں عملوں پہ چوٹ پڑے, اور وہ محفل نصیحت کی محفل ہو ہی نہیں سکتی جس میں بندہ ایک دفعہ اپنے دامن میں نہ جھانکنے لگ جائے. آج دیکھیے دین کے نام پہ جو میں نے لوگوں سے فگرز جمع کرائے ہوئے ہیں, 4 سے 5 گھنٹے کی کہتے ہیں کہ ایک محفل ہوتی ہے ختم کی, کسی بھی چیز کا ختم ہو, وہ قرآن کا ختم ہے نعوذ باللہ, یا درود شریف. نعوذ باللہ اس لیے کہا کہ قرآن تو کبھی ختم نہیں ہوگا نا, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہمارا قرآن ختم ہونے والا ہے, تکمیل ہو جائے گی جتنی ہم کر سکیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ عام محفل جس میں کوئی 313 بار پڑھنی ہے سورہ یاسین یا 125,000 پڑھنا ہے, 4 سے 5 گھنٹے تو ہوتے ہی ہیں. آپ جو وقت پہ آ جاتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں بےچارے, آخر تک پھر پڑھنا پڑتا ہے ان کو, اور جو بعد میں آتے ہیں وہ اچھے رہتے ہیں کہ وہ ساتھ جی آپ نے تو ہمیں ڈش کہی تھی لے کے آنی, ہم تو کھانا پکاتے رہے. اور گھر والے کو تو میں نے کمی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, وہ بےچارے تو ارینجمنٹس میں ہوتے ہیں. آپ 5 گھنٹے کی محفل میں بیٹھے کیا لے کے آئے؟ کسی عمل پہ زد پڑی نہیں پڑی, کوئی اپنا گناہ یاد کر کے روئے, کوئی نیکی کا شوق آیا نہیں آیا. ہماری ویکینڈ کلاس تھی تو مجھے پتہ چلا 2 بچیاں بریک میں اٹھ کے چلی گئیں کسی جگہ, اور ان کو کچھ اسی طرح کی رسم میں جانا ہے, فنکشن میں, وٹ ایور. کل میں نے ان کو بلا لیا آفس میں, میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ آپ کلاس چھوڑ کے کیوں گئی تھیں اور کہاں گئی. جو نام لیا انہوں نے وہ بھی دین ہی تھا لوگوں کی نظر میں, اور دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا آپ وہاں گئیں؟ ہاں گئیں. پھر میں نے کہا وہاں سے آپ گھر کب گئیں؟ کہنے لگیں شاید 4-5 بجے گئے, 3-4 گھنٹے لگے. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں سے کیا سیکھا؟ سوچ میں پڑ گئیں. پھر کہنے لگی نتھنگ. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کلاس چھوڑ کے کیا مس کیا؟ کہتی ہے لوٹ. بعد میں ان کو پتہ چلا دوستوں سے کہ, اور سبق تو روز ہی اہم ہوتا ہے. کیا وہ محفلیں ہیں نام پہ دین کے جہاں سے آپ ایک آنسو نہ آنکھوں میں بہا کے لے کے جائیں, اندھے بہرے بن کے نصیحت کی باتیں سنتے. لوگوں کو یہی باتیں بری لگتی ہیں قرآن کی, کہ اس میں نصیحتیں بہت ساری ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں کہیں نہیں پاتے, اور جب ایسے لوگ اپنی فکر کر لیتے ہیں تو پھر ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ جو عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے امام. ان کو بچے اور گھر والے یاد آتے ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے جو ان لوگوں کے اندر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ دعا انسان کی سیرت کے چھپے ہوئے گوشوں کو بے نقاب کر رہی ہے. ان کے ارادے کیا ہیں, ان کی بلند نظری, ان کی اعلیٰ ظرفی, وہ کیا سوچتے ہیں. ذرا ایک اس دعا سے سوچیں, اور جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کو ساتھ ملا کے دیکھ لیجئے. عباد الرحمن کہتے ہیں اللہ ہمیں اکیلے اس راستے پہ نہیں چلنا, ہمارے بیوی اور بچوں کو ہمارے ساتھ بنا اس کام کے اندر معاون, ہماری آنکھیں ٹھنڈی کروا, ہمارے دل خوش ہوں. اگر یہ ڈانٹتے رہیں گے, اگر یہ غصہ کرتے رہیں گے, دل دکھا ہوگا, تیرا کام کیسے کریں گے؟ جس دل میں اولادوں کے غم پل رہے ہوں گے وہ دوسروں کی اولاد کو کہاں خیر دے سکے گا. اس لیے اللہ تو ہمارے گھروں کو بھی ٹھنڈا گھر بنا دے. عرب چونکہ خنکی اور ٹھنڈک کو پسند کرتے تھے, گرمی جو بہت تھی, اس لیے یہاں ٹھنڈک کی بات کی گئی کہ ان کو اس گرمیوں کی دوپہر میں وہ ٹھنڈی چیز بنا جو ہمیں اطمینان دے. ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں اور بیویوں کے لیے شوہروں کو ایسا بنا دے کہ ان کے اخلاق ان کی عادات اتنے پسندیدہ ہوں کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ان کے حال حلیے, ان کے طور طریقے, ان کا چلنا پھرنا بولنا, ان کے اندر قناعت ڈال دے, ان کو نمازوں کا شوق ڈال دے, وہ مسجدوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جائیں, ہماری عورتوں کے دل بازاروں سے ہٹا دے, وہ اپنی نمائش کرنے کی بجائے تیرے دین کو لوگوں کے سامنے عام کرنے والی بن جائیں. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو کیسا کر دے, اور ہمیں وجعلنا للمتقین اماما. کبھی غور سے دیکھے نا, اس ایک دعا میں ایک سچے عباد الرحمن یا ایک سچے عبد الرحمن کا پورا پلان دکھتا ہے, فیوچر کا منہج ہے اس کا. کیونکہ نیکی کے سفر تنہا نہیں طے ہوتے, بڑے کام اکیلے نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے کام آپ اکیلے کر لیں گے, وقت کے ریلے میں بہہ جائیں گے, اللہ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر دے دے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی بڑے کام کرنے ہیں نا, تو ان بڑے کاموں کے لیے آپ کو بہت سارے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے, اور گھر والوں کا ساتھ بندے کو جرت بھی دیتا ہے, طاقت بھی دیتا ہے, کانفیڈنس آ جاتا ہے. ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ پھر اس پہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ شکر ہے اللہ کا, ہمارے گھر میں بھی اس کا اثر ہے. ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں تو ہمارے گھر والے بھی سیکھ رہے ہیں, ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو اپنے بھی سمجھ رہے ہیں, وہ ہمارے فرما بردار بنیں گے, ہماری اطاعت کریں گے, اچھے نمونے بنیں گے, ہماری پیروی کریں گے, تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری بات سچ ہے. اور جس کو کہتے ہیں کہ گھر والا نہ مانے, اس کی باہر کس نے ماننی ہے. کہتے ہیں نا, جو گھر والوں کی سن ڈانٹ کھاتے ہیں, باہر والے بھی ان کو ڈانٹتے ہی ہیں. جس کی گھر والوں نے عزت نہیں کرنی, اس کی باہر والوں نے کہاں کرنی ہے. تو یہ دعا ایک بندے کی بے بسی کا بھی اظہار ہے کہ اللہ یہ کیسی چیز ہے. اور یہاں آپ کو ایک بڑا پیارا نقطہ دکھے گا, رہبانیت کا رد. یہ دعا سمپل ہوتی ہے, ہم کہتے فلاں رات کو بیٹھا عباد الرحمن بنا, اس نے کہا اللہ مجھے زندگی کے جھمیلوں سے دور کر, مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے تارک الدنیا بنا دے, میں کسی جنگل میں چلا جاؤں, مجھے تو شادی کا نام بھی نہ سنانا, بچے تو مجھے دینا ہی نہ, میں نہیں گروسری خریدنے جا سکتا, میں گھر والوں کی ذمہ داریاں نہیں کر سکتا. یہ کہا ہے نہیں, سب کے بیچ میں رہ کے اللہ اپنا بنا لے, ان سب کو میری طاقت بنا. اے اللہ جو تنے مجھے دنیا میں دیا ہے وہ ہر چیز مجھے تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے, میں ان سے بھی خوش ہوں, ان کے ساتھ بھی میرا دل لگے, لیکن نمازوں کے وقت میں میری بیویاں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو علت بنائی گی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور آپ کی بیویاں گواہی دیتی ہیں کہ ہم لوگ باتوں میں یوں مصروف ہوتے, ایسے لگتا کہ اللہ کے نبی کو ہم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں, اور اتنے میں مؤذن کی آواز آتی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو آپ یوں پاس سے نکل جاتے جیسے کبھی ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے بہترین امتزاج. وجعلنا للمتقین اماما, جن کو بھی متقیوں کا امام بننا ہے نا, یاد رکھیں وہ گھر والوں کی روش میں بہنے کی بجائے ان کو اپنے ساتھ دین کے معاون بناتے ہیں. وہ ان کی غلط چیزوں میں نہیں بہہ جاتے, وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بس اب کیا کریں, پھر ان کی بھی تو باتیں ماننی ہیں اور شوہروں کو تو خوش کرنا ہے. ہمارے ہاں جو ایک عجیب سا جملہ سکھا دیا گیا پتہ نہیں کہاں سے کہ جی شوہر تو مجازی خدا ہے, خود ہی شرک کا گڑھ کھول دیا. کوئی مجازی خدا نہیں ہوتا, صرف حقیقی خدا ہوتا ہے. پھر ایک اور بات سنا دی کہ جس پہ شوہر خوش ہے وہ جنت میں جائے گا. میں تم سے خوش ہوں نا, تو بس تم کیوں فکر کرتے ہو, یہ بتائیں کہ آپ سے بھی اللہ خوش ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ وہ عورت جس نے فرائض کی پابندی کی, پانچ وقت کی نماز, روزہ, اپنی عزت عصمت کی حفاظت کی, اور اس کا شوہر اس سے خوش ہے, جنت میں جائے گی. پر کون سا شوہر خوش ہے؟ جس سے اللہ خوش ہے. اگر وہ شوہر خود تو جنت میں جانا پا رہا ہو تو وہ بیوی کو کیسے لے کے جائے گا؟ تو بہترین طریقے سے انسان کوشش کرے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے گھریلو زندگی کی لذتوں میں ایسے کھو جائیں کہ ان کو اللہ کے راستے یاد ہی نہ رہیں, اللہ کی یاد کے مقام ان کی زندگی سے نکل جائیں. دیکھیے, سب سے زیادہ بڑی کمزوری انسان کی اس کا گھر ہوتا ہے, گھر والے. محفل سارے گھر والے اس وقت گھر میں بیٹھے کوئی فنکشن کر رہے ہو نا, تو آپ کا دل ہی نہیں لگے گا قرآن میں. سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آنا. سارے گھر میں سو رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے, جہادن کبیرہ. لیکن جو یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ کل آگے بھی کریں گے. इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को बता दो, उलाइका युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू व युलक्कौन फीहा तहियतन व सलामा। यही हैं वो खुश नसीब जिनको बदले में मिलेगा जन्नत का बाला खाना इनके सब्र करने के बायस, और इनका इस्तकबाल किया जाएगा वहाँ दुआ और सलाम से। हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें, खालिदीन फीहा हसुनत मुस्तकर्रम व मुखामा। बहुत उम्दा ठिकाना है और क्यामगा है। ये किन की बातें हैं? अल्लाह कहते हैं कि ये कौन सा सब्र है जो इन्होंने किया था, ये कौन सा सब्र है कि जिसकी वजह से इनको जन्नत के बाला खाने दिए जा रहे हैं और जिसकी जगह से इनका इस्तकबाल और दुआ सलाम हो रहे हैं। ये अल्लाह के रास्ते का सब्र है। बड़ा काबिले गौर नुक्ता है ये, और ये है वो नुक्ता जहाँ पे आके अब आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि जाहिद हम भी जिहादन कबीरा का और इन आयतों का रब्त देख सके। जिहाद सब्र मानता है, इबादुर रहमान बनना सब्र मानता है। सब्र भी जिद्दोजहद का नाम है, अंदर बाहर की रुकावटों को दूर करने का नाम है। अपनी तबीयतों के अंदर इस तरह की लताफत और नरमी पैदा करने का नाम है कि लोगों की मुखालफतों के जवाब में गुस्से में ना आ जाए। इसी तरह जिहाद में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ एक ऐसी जन्नत दिखा दी हर एक को कि जहाँ बालाहानों में फरिश्ते खड़े हैं और मुस्कुराते हुए इस्तकबाल कर रहे हैं कि आओ बिमा सबरू। हर बंदे के घर वाले उसके साथी नहीं भी बनते, हर एक की औलाद उसकी आंखों की ठंडक नहीं बनती। नूह जैसे और लूत जैसे शौहर भी गुजरे और बाप भी गुजरे, तो उनको क्या कहा कि तुम बुरे के रंग में रंगने की बजाय अपने घर का माहौल ना ख़राब करो, इनकी बातें मानते जाओ, चलते जाओ, करते जाओ, क्या ये काफ़ी है? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। तुम चलते रहो, कोशिश करते रहो, इस्लाह को, हालात को बेहतर करते रहो, फिर देखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कैसी आसानियाँ लेकर आता है। हसन बसरी का नाम सुना होगा, इन आयात के बारे में फरमाते हैं कि इस आयत में जो आंखों की ठंडक और औलाद की बात की गई है, तो कहते हैं कि इनको अल्लाह की इताअत में मशगूल देखे, यही एक इंसान के लिए आंखों की असली ठंडक है। और अगर औलाद और अजवाज की ज़ाहरी सेहत, आफियत और खुशहाली भी इसमें शामिल की जाए तो वो भी दुरुस्त होगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे सूरत बिल्कुल आखिरी मरहले पे आ गई। अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में हम सबको झंझोड़ा, कुल मा या बऊ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। आप फरमाइए, क्या परवाह है तुम्हारी मेरे रब को अगर तुम इसकी इबादत ना करोगे, उसको पुकारोगे नहीं, उसके रास्ते में जिहाद नहीं करोगे, तो क्या बड़ी बात है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगी? वो कि तुम्हारे काम की वजह से थोड़ी चल रहा है। अगर तुम अपने रब को पुकारो नहीं, इल्तजा नहीं करो, उसके सामने ना गिड़गड़ाओ, उसको कुछ नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि फ़कत कज़ब तुम, और तुमने तो उल्टा झुटलाना शुरू कर दिया। फ़सौफ़ यकूनु लिसामा, तो ये झुटलाना तुम्हारे गले का हार बना रहेगा। अब आप ज़रा उस आयत के साथ इसको देखें। अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा मनहज दिया। हमारे यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट हो गई चीज़। हम कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में दो गिरोह हैं, एक है इल्मी गिरोह, इल्म हासिल करने वाले, जिहाद बिल कुरान करने वाले, और दूसरे हैं तलवार पकड़ के जिहाद करने वाले। ये तसव्वुर आता है ना, एक है उलमा का गिरोह और एक है फौजी। दुनिया का नक्शा भी ऐसे ही है, हर फील्ड का एक एक बंदा दिखता है। मैं थोड़े से लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँगी कि इस्लाम क्या कहता है, और इंशाल्लाह आप इबादुर रहमान की सिफ़ात को पढ़ने के बाद इस नज़रिए को समझेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए, मस्जिद नबवी तामीर हुई, उसके अंदर एक छप्पर डाला गया, उस जगह को अस्हाबे सुफा के लिए ख़ास कर दिया गया। सुफा चबूतरे का नाम था, अकेडमी का नाम कह लें। लोग दूर नज़दीक से जो मदीना से बाहर थे या रहते भी इधर ही थे तो उनके कोई घर बार नहीं थे, वो फुल टाइम डेडिकेट हुए, तकरीबन 70-80, और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट उनकी रही। ये फुल टाइम के कुरान के स्टूडेंट्स थे, आप कह लें कुरान और हदीस के स्टूडेंट्स थे। इन्हीं में वाक़यात आप अक्सर सुनते रहते हैं हमारी ज़ुबानों से कि कैसे भूखे रहते थे, खाना नहीं खाने जाते थे कि कहीं हमारा इल्म ख़त्म ना। अब होता क्या था कि ये जो लोग थे ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुल टाइम स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन जहाँ कभी भी जंग का मौका आता तो इन्हीं में से ये स्टैंडिंग आर्मी के तौर पर वहाँ पहुँच जाते थे। ये जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत क़ुरान को अपने अंदर ला चुके, तकवा आ गया, ईमान आ गया, अल्लाह की मोहब्बत आ गई, ये इतने लबरेज़ होते थे उस कुरान के साथ जिद्दोजहद कर करके, फिर इनमें सब्र भी आ चुका होता था, कई कई घंटे की महफ़िलें होती होंगी, कई कई मरहले थे, इनके अंदर इतनी खूबियाँ आ चुकी होती थी कि जब दुश्मन से मुकाबला करना होता था तो अल्लाह के नबी को इनसे ज़्यादा बेहतरीन कोई भी मुजाहिद नहीं दिखता था कि जो जाके दुश्मन के रास्ते में मुकाबला करे। लिहाजा जो ही जंग आती, इनकी क्लास ख़त्म, पोस्टपोन करो, बंद, छुट्टियाँ, चलो जिहाद पे। वही हाथ जो यहाँ कलम पकड़ते थे ना, वो दुश्मनों के सामने तलवारें पकड़ के जाते। इमाम रबी जैसे लोग जो सारी ज़िंदगी इल्म सीखते रहे, इल्म हासिल करते रहे, और जब मौका आया जंग का तो एक टूटी हुई तलवार के ऊपर कपड़े की धजियाँ बांध के मरम्मत कर रहे हैं, और देखने वाले ने मुस्कुरा के कहा, इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला इस टूटी हुई तलवार से करोगे? तो कहने लगे, तुमने तलवार देखी है, तलवार के पीछे वाला हाथ नहीं देखा, और जब हाथ देखना है तो लाओ ज़रा मैं तुम्हें बताऊँ ये हाथ करता क्या है। और सबसे मजबूत ढाल जब उसके सामने की, एक ज़ोर की तलवार पड़ी, वो ढाल दो टुकड़ों में आ गई। ये ज़रबे कलीम है, हाथ है बंदा है मोमिन का, हाथ अल्लाह का। ये कारी नज़र आता है कुरान, ये है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो पहले इल्म के रास्तों से गुजर चुके। आप औरतें, आप क्या करें? आप पढ़ते हैं तो आपके दिल में मुजाहिदाना ख्याल आते हैं ना, इस्लाम के लिए कुछ करें, क्या करें? आपके ये जज्बात मूव होंगे आपके बच्चों में, दूध पिलाते हुए मुजाहिदीन के किस्से, वो माएँ दुआएं करके भेजती थी कि बेटा जाओ और अल्लाह करे कि तुम्हारी शहादत की खबर आए। आज कोई माँ तस्वुर भी कर सकती है कि मेरा बच्चा शहीद हो? हम कहते खुदा ना हस्ता, ये शहीद हो गए, हाय ये मर ना जाए बेचारे। शौक तो बड़ा अल्लाह के रास्ते में निकलने का, लेकिन ये मर ना जाए। फिर यही औरतें जो बच्चे पैदा करती थी, वो बड़े होके अच्छे शौहर बनते थे, बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। पहले लोग कुरान के मरहले से गुजरे, उनकी तरबियत हुई, वो सीख चुके, अब उनको पता है कहाँ रुकना है, कहाँ सब्र है, कहाँ कोशिश है, कहाँ पलटना है, कहाँ से आगे आना है, जंगे जीती। आज के दौर की कहानियों को देख लें, आज हमारे माशरे में देखें, एक जिहादी गिरोह है, ये जिहाद की कॉल दे रहे हैं, एक तबलीगी गिरोह है, ये कहते हैं तबलीग करो, एक गिरोह वो कहता है सब छोड़ो कारोबार करो, तीसरा कहते हैं आओ घर बनाओ। इस्लाम ने इतना प्यारा इम्तिजाज दिया। आज अगर आपसे कोई कहे ना कि आओ एक ज़मीन का टुकड़ा लेके एक बस्ती आबाद करते हैं, छोटी सी मॉडल के तौर पे मुसलमानों की बस्ती, तौहीद टाउन कह लें, कोई भी टाउन कह लें, उसका मनहज क्या होगा? वो बच्चे चूज़ करें जो अभी बिल्कुल डे वन से शुरू होने वाले हैं, जिनकी माएँ भी मोहब्बत में चू रहे हैं, या आप ही के बच्चे। मुझे तो लगता है हर जगह जहाँ कुरान पढ़ा जाता है फिर आवाज़ें आती हैं कि बच्चों के लिए कुछ करें। आप जैसी माएँ जो दिन रात कुरान पढ़ती हैं ना और सुनती हैं, कोशिश कर रही हैं, मदद हो रही है, आपके बच्चों को जमा करके एक ऐसी जगह बने जहाँ उनको फिर वो इल्म दिया जाए, वाकई जो कहते हैं कि जो लूह को गर्मा दे, जिससे जिगरे लाला में हो ठंडक पैदा, फिर वो नस्लें परवान हो जो आपके दूध में से इस्लाम की मोहब्बत लेके आए, जो मुजाहिदीन के किस्से यूं सुने जैसे लोग सिंगर्स के और गुलकारों के और न जाने किन के किस्से सुनते, फिर वो बच्चे बड़े हों, उनके अंदर इतना ईमान है, जैसे दिन की 5 नमाजें हमें एनर्जी देती हैं ना, इस तरह ये कुरान का पढ़ना इतनी एनर्जी देता है कि अच्छा दुश्मन आया आँख निकाल देंगे। देखिए वो माएँ अलग से बैठ के लेसन नहीं देती थी जिहाद के नाम पर, मुआविज़ और माज की माँ अफरा ने उनको बैठ के कोई लेक्चर नहीं था दिया हुआ कि तुम्हें आओ बताऊँ कि जिहाद कैसे करते हैं, तलवार कैसे पकड़ते हैं, और खुदा के लिए इसको टेररिज्म ना कहना। वो माएँ कहानियों में सुनाती थी। अब्दुलरहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं बदर के मैदान में था तो दो लड़के मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, चचा चचा ये अबू जहल कौन है? कुछ नहीं पता था, देखे हुए नहीं। मैंने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? कहा हमारी माँ ने हमें बताया कि वो मक्के में अल्लाह के नबी को गाली देता था, तो आज हम घर से दोनों कसम खा के आए हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने उसको मारना है और ये मेरा भाई कहता है मैंने मारना है। कहते हैं भी ये बातें हो रही थी कि दूर मुझे अबू जहल दिखा सर पे शुतुरमुर्ग का पर लगाए हुए लोगों के खिसार में। मैंने कहा वो रहा तुम्हारा शिकार। कहते हैं मेरी ये बात सुन के वो बच्चे यूं भागे जैसे वो मूसल के अंदर से वो जैसे वो कुंडी डंडे में से अदरक नहीं उठता। और थोड़ी देर में दोनों बच्चे अपनी तलवार के साथ खून लगाया हुआ लाए और दावा कर रहे हैं वो कहते हैं मैंने मारा है, वो कहते हैं मैंने मारा है। कभी गौर तो करें आप, हम जिस सोसाइटी में बैठे हैं दुख और दर्द के साथ कहूंगी कि आज हम अपने मर्दों पे एक नजर डालें, इस काबिल हैं कि कल तलवार पकड़े। खुदा ना खास्ता अगर हालात बने और बने हुए हैं बहुत सारे, क्या इनके अंदर ईमान की वो मोहब्बत है? जो ईमान सुबह फजर के लिए नहीं लेके जा सकता वो फजर के वक्त दुश्मन पे हमला करने कैसे ले जाएगा? वो ईमान जो मस्जिद तक नहीं ले जा सकता वो मैदान जंग में कैसे ले जाएगा? और जिन कंधों ने गिटार का वजन पकड़ा हुआ है वो तलवार का वजन कैसे उठाएंगे? गा गा के अगर इस्लाम मिलता तो पूरी दुनिया मुसलमान हो चुकी होती। हर बंदा तो गा रहा है, हर बंदा तो कूद रहा है, हर बंदा तो नाच रहा है। हमारे तो जवान होते हुए बच्चे स्कूल के फंक्शनों में जाके नाचते और गाते हैं, हम कहते हैं इट्स फाइन। आप कभी सोचें कैसी नस्लें कैसे लोग हैं हमारे इर्द, और आप इनको जिहाद की बात करें ये आपको चुप करा देंगे। आज के दौर में कोई तंजीम जिहाद की कॉल देती है पहले लोगों की तरबियत करें। वो नस्लें इल्म का पानी दिल में आ चुका वो आंसू बहाते हुए जाएं, यकीन करें अल्लाह के नबी के महफिलों के किस्से पढ़े, सहाबा किराम वहां से उठते तो रोते थे, कहते थे अल्लाह कोई वक्त आया तो मैं तुझे दिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ। ये सूरत अहज़ाब में आप आयत पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, एक शख्स अल्लाह ने उसका तज़किरा कर दिया कि अल्लाह उसकी मन्नत को ज़रूर पूरा करेगा। अल्लाह कहते अल्लज़ीन सदक़ु नहबहु, ये वो लोग हैं जो अपनी नीयतों को सच करके दिखा देते हैं। एक साहबी कहते हैं आज तो अल्लाह भी देखेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, बाद में कांपने लग गए कि मैंने आज क्या कह दिया। अल्लाह के ऐन वक्त पे मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ, ऐन वक्त पे कहीं मैं डर ना जाऊँ, मेरा ईमान कमज़ोर ना हो। लेकिन जब वो निकलते थे, अबू दुजाना की कहानी सुन ले कि जब सर पे सुरख पटका बांध के निकलते थे तो लोग कहते थे बस आज खैर कोई नहीं, आज अबू दुजाना ने सुरख पटका बांध लिया अपने सर पे। एक जंग में इनकी तलवार टूट गई, हौसला नहीं टूटा। हम कहते तो शुक्र है कर रहे जी सारा काम जो दिया, वो गोलियाँ ख़त्म हो गई थी। फिर हम वापसी पे खाना पीना लेके घर से ले गए थे कि अब तो काम ही कुछ नहीं हो सकता। नहीं कहा अल्लाह के नबी तलवार नहीं है क्या करूँ, अल्लाह के नबी ने उनको अपनी तलवार दी। और अबू दुजाना इतना फ़ख्र करते थे, ज़िंदगी के आखिर तक वो तलवार उनके पास रही और कहा करते थे मैंने इसे एक तलवार से कितनों को मारा। क्यों? अल्लाह के नबी ने एक जुमला बोला था वो तलवार देते हुए, ये कोई छोटी बात नहीं है किसी को एहसास दे देना, कोई ओहदा दे देना। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू दुजाना ये तलवार तुझे दे रहा हूँ, अब इसका हक अदा करना। हर जंग पे कहा करते थे अल्लाह मुझसे नबी की तलवार का हक अदा करा दे, और वो रो के इस पे ख्वाहिशें करते थे। उकाशा बिन मैसन ओहद का मैदान था, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरी तलवार टूट गई है। कहा मैं क्या दूँ मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा अल्लाह के नबी दे मैंने अभी लड़ना है। पास एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, अल्लाह के नबी ने उसको पकड़ा। अल्लाह की रहमत से ये मौजज़ा था नबी सल्लम का कि वो चमकती हुई तलवार में बदल गया। कहा लो उकाशा ये ले लो, और उकाशा ने उसे एक तलवार के साथ कितने दुश्मनों के हाथ तोड़े। आज तो हमने खुद बदनाम किया इस्लाम को और जिहाद को, हमने उल्टी गंगा चलाई। हमें नहीं पता कि आज उम्मत को किस चीज़ की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है तो कुरान की ज़रूरत है। आज जब तक हमारी नस्लें इस कुरान से नहीं जुड़ेंगी वल्लाही वो हमारी आंखों की ठंडक नहीं बनेंगी। आप उनको उम्मुल कुरान में भेजें, आप मदीना में भेजें, आप मिस्र में भेजें, अगर दिल नहीं जुड़े अल्लाह ना करे वहाँ से सिगरेट पी पी के आ जाएंगे। मैंने खुद देखा, मैं इजिप्ट में थी, इतनी कसरत से वहाँ यंग लड़के सिगरेट पीते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कहीं देखा। सड़कों के किनारे लड़कियाँ तक वहाँ सिगरेट पीती हैं। कई ऐसे हैं जिनको माँ बाप ने कितनी उम्मीदों से भेजा हुआ कि ये पढ़ने गए हुए हैं, अकेले लड़के हैं, कौन पूछे, वो ऐश करते हैं। मुझे कोई पूछता है हम भेजें अपने मुल्कों को बाहर के मुल्कों में पढ़ने बच्चों को, मैं कहती हूँ पहले उनकी जहन साजी करें, अकेले ना भेजें, देखें कहाँ जा रहे हैं। कोई मक्का में जाके हर बंदा अगर मुसलमान हो जाए तो अबू जहल क्यों महरूम रहता? काबा में था, रोज़ था, अल्लाह के नबी के साथ था। अब्दुल्ला बिन उबई तो जंगों तक में जाता था, नमाज छोड़ने का तो तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन क्या हुआ, दिल नहीं बदला। तो लिहाजा जाहिद हम भी ही जिहादन कबीरा करना है तो ये वसफ लाने पड़ेंगे, ये सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और इस वक्त इस फेज से दुनिया गुजर रही है, आज लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया। जितना जिहाद का मौजू बदनाम हुआ उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आम हुआ। आने वाली नस्लें देखेंगी, फिर दोबारा वही माशरा आएगा। तलवार से नहीं, किरदार से। ऐसे किरदार इबादुर्रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्दी हौनन, ये किरदार जब बनेंगे फिर आप देखेंगे कि कैसे दुनिया फतह होती है। अल्लाह के नबी ने तलवारें नहीं थी पकड़ाई, 13 साल सहाबा को सिखाया, इल्म से जोड़ा। मुशक्क़त है, ये मारी तो होती है कि मुसलमान होते हो तो तुम्हें कोयलों पर लिटाया जाएगा और ये कुछ किया जाएगा। इतनी सख्त ट्रेनिंग हुई तो फिर 10 साल कितनी जंगें लड़ी, सिर्फ एक एक साल में 8-8 जंगें 10-10 लड़ी। हम जैसे होते कहते और भी कोई है इम्तिहान हमारे लिए, कोई और भी मुसीबत है जो हमें भुगतनी पड़ेगी आपके साथ रहकर। एक बंदा नहीं हटा, एक बंदा पीछे नहीं हटा मुश्किल के बाद। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी थी। नबी सल्लम के दौर में जंगें बिल्कुल आसान थी, पढ़ने वाले कुरान छोड़ के कलम छोड़ते थे, तलवार उठाते थे, और तलवारें उनकी माए बचपन में उनको यूं चलाना सिखाती थी जैसे शायद आज कोई किसी बच्चे को कोई गेम पकड़ के सिखाए। दुश्मन आता था, तलवार तीर लेके चलते थे। अब आज के दौर में आप इमेजिन करें कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, चेचनिया में जंग लगती है, कोई बहुत रगबत दिलाता है जंग जिहाद करो करो, वो उठते हैं चलो जी मर चार छः कहते हैं हम जाते हैं। मैंने रिपोर्ट सुनी कि जब ये अफगानिस्तान का जिहाद हुआ, गलबे में आके जज्बात में जितनी तकरीरें होती हैं, और ये अच्छी सोच है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसमें तरीक़ाकार अपने लिहाज से वो तरबियत भी करते होंगे। मैं कोई अपना पर्सनल कमेंट इसमें नहीं दे रही, सिर्फ एक रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। एनीवे कि वो कहती हैं कि कई मर्द पाकिस्तान से जो थे वो गए वहाँ जिहाद पे कि हम जाके अफगानिस्तान में जिहाद करते हैं, और हमारा दिल जज्बे से भरा हुआ है। कहने लगी जब वहाँ गए पता चला कि वो जुबानी नहीं आती, उनके कमांडर उनको पश्तो में या अफगानी में बात करें, इनको या उर्दू आती है या इंग्लिश आती है। कई दिन ख्वार होकर वापस आके उन्होंने कहा आपकी ज़रूरत ही नहीं हमें, क्योंकि पहली बात है आपकी हमारी ज़ुबान एक नहीं है, दूसरी बात है कि जो आज का जदीद असलहा है उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कितने कम्युनिकेशन गैप है। एक और बात याद रखें कि हमेशा सुन्नत तरीका क्या है कि जिहाद अपने इलाके में रहने वाले लोग अपनी जगह के लिए करते हैं। अल्लाह ने करे इस मुल्क में कोई मुश्किल आए इस्लाम को तो यहाँ वाले आएंगे, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वाले, सऊदी अरब है तो वहाँ। दूसरे मुल्क से जाने में तो मिजाज ही बदल जाते हैं, बीमार हो जाए, मौसम का फ़र्क, कपड़ों का फ़र्क। इस्लाम चाहता है कि एक ऐसी सेल्फ सफिशेंट किस्म की सोसाइटी क्रिएट हो, आप अपनी सारी ज़रूरियात के खुद कफील हो जाए, ना आपको किसी से एड लेनी पड़े, ना किसी से आपको कुछ और मांगना पड़े। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक काम करने वाला बना दे। आज अगर हम अपनी औलादों को, अपने मर्दों को, अपनी औरतों, अपनी बेटियों को इस कुरान के मरहले से नहीं गुजारेंगे, कभी मुजाहिदाना सोच पैदा नहीं होगी, फजर पे नहीं उठेंगे, अल्लाह उठा दे तो उठा दे, नहीं छोड़ेंगे गलत चीज़ें। दुआ करें, मैं कहती हूँ 100 बातों की एक बात है, प्यार से मार के गले लगा के फैमिली टाइम करें, खुद भी 10 दफ़ा सुने, 11वीं दफ़ा उनके साथ बैठ के सुने। सिर्फ मैं तो कहती हूँ इस बात पे दौरे कुरान को काफ़ी समझें। अभी ये लफ्जी तर्जमे लंबी डिटेल्स बच्चे लड़के मर्द नहीं सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस साल पाकिस्तान जब गई तो मैंने प्रैक्टिकली अपनी फैमिलीज में कोशिश की, क्योंकि हर घर का एक ही मसला है, बच्चे नहीं सुनते, बच्चे पास नहीं बैठते, बच्चे बच्चे ऐसे लगते दर्द सर बन चुके हैं। तरह के रिश्तेदारियाँ होती हैं, फिर प्यार भी होती है, मोहब्बत भी होता है, फिर मैंने बैठी बात की रही, फिर मैंने कहा कि चलो आप ऐसा करो कि सब लोग बैठ के सुनो। फिर अल्लाह के हुक्म से इत्तफाक से मेरे पास वो हार्ड डिस्क थी जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स कुछ होती हैं, मैंने जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिला है मैंने उनको पूरा दौरा कुरान डाउनलोड कर दिया। फिर मैंने बच्चे की जिम्मेदारी लगाई, माँ की नहीं लगाई कि तुम इसको लेके बैठ के सुनना, क्योंकि माँ को तो चलाना ही नहीं आएगा और माँ के हाथ किसने आना है। मैंने बच्चे से कहा कि अब तुमने अब ये घर में एक ख़ास वक्त पे चलाना है, बहन को भी बिठाना है, अम्मी को भी, घर वाले बैठ के इसको सुनो, फिर थोड़े दिन के बाद जब मौका मिलता है आप कितना सुन लिया आप कितना, और माशाल्लाह सुन रहे। ठीक है जी, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाह।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون